अच्छा, अब बदगुमानी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जरा सा तरतीब पे गौर कीजिएगा आयत की। गुमान की बात करके साथ ही फरमा दिए वला तजस्ससु, और तजस्सुस ना करो। ये असल में आज का अनाउंस्ड टॉपिक था, लेकिन मुझे लगता है कि हर बात ही हमारे फायदे की है, क्योंकि ये हमारी अमली जिंदगी के ताल्लुक है। याद रखिए, जिससे भी बदगुमानी होगी उसके बारे में तजस्सुस शुरू हो जाएगा। आप बदगुमान है अपनी बहू से, तजस्सुस शुरू, जाओ देखो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है, किसको दिया है, किसको लिया है, क्या उसके इरादे हैं, किधर है, तजस्सुस शुरू। शौहर के बारे में अब बदगुमान है कि लगता है कि आजकल ये कोई दूसरी औरत के चक्कर में है, तजस्सुस शुरू। फोन चेक करेंगे, उनकी ईमेल्स चेक करेंगे, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस देखेंगे, उनके फेसबुक्स देखेंगे। पहले तो कोई ऐसा चक्कर आता था तो घर में लोग चीजें ढूंढते थे, अलमारी में कोई तस्वीर तो नहीं छुपाई हुई और किसी पलंग के तकिए के नीचे कुछ रखा हुआ तो नहीं। अब लोग कहाँ जाते हैं ढूंढने? वो नेट पे जाते हैं, घर की दुनिया से दूर बाहर जाकर देखते हैं। तो तजस्सुस का नुक्ता आगाज बदगुमानी है। कहते किसको है तजस्सुस? देखिए, जीम सीन सीन इसका रूट है। तो बेसिकली तजस्सुस क्या होता है, अगर अरबी में देखें तो जीम सीन सीन इसका रूट है। दो लफ्ज लिखे हैं, एक होता है तजस्सुस और एक होता है तहस्सुस। हा के साथ होगा ना तो अच्छी चीज होती है। सूरत यूसुफ में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हजरत यूसुफ के बाप ने क्या कहा था, तहस्सुसु यूसुफ, जाओ यूसुफ को या अपने भाई को ढूंढ कर लाओ। तजस्सुस क्या होता है? रग का दबना। आप देखिए कि आप बैठे में एकदम आपकी रग दब जाए या फड़फड़ाने लगे तो आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे अनयूजुअल चीज है। तो तजस्सुस क्या है? बुनियादी तौर पर दूसरे के मामले की कुरेद करना। अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे अंदर एक जज्बा रखा था, क्यूरियोसिटी इंग्लिश में कह लीजिए, कुछ ढूंढने का, कुछ पाने का। यानी कोई सवाल कर सकते हैं ना कि अगर तजस्सुस बुरी चीज लग रही है और हम इसका बुरा इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे अंदर रखता ही ना, सवाल समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों रखा था? ताकि हम खैर के रास्ते ढूंढें, हम रिसर्च करें। थोड़ा सा रिसर्च के लफ्ज के साथ भी समझ कर देख लीजिए तो आपको ये बात और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि तजस्सुस में क्या होता है कि कुरेद करना। हमारे लिए हुक्म क्या था? कायनात में गौर व फिक्र करो। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीना यज़कुरूना, अल्लाह का जिक्र करना है क़ियामन व क़ऊदन, है ना? तो तजस्सुस बहुत अच्छा था। किस चीज़ का तजस्सुस? मेरी नमाज आज से 20 साल पहले से मैं पढ़ रही हूँ, मैं ज़रा चेक करूँ ये कैसी है। रिसर्च कीजिए, इल्म लीजिए। मेरी नमाज की दुआएं जो मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ, लाओ ज़रा मैं तजस्सुस रखूँ कि भला कोई और भी दुआएं हैं। नेकी के कामों का तजस्सुस रखिए, खैर के कामों का तजस्सुस रखिए, वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि तजस्सुस किस चीज़ का होना चाहिए कि अल्लाह की निगाहों में हमारा क्या मुकाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम करते थे ना, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें बाइबल और इस तरह ओल्ड कुतब के नाते से हम तक पहुँचती हैं। तो उनमें से ये सवाल भी होता था कि अल्लाह अंत फिस समाई व इन्नी फिल अर्थ, मैं तो ज़मीन पे हूँ आप आसमान पे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे खुश हैं कि नाराज़ हैं? अब ये तजस्सुस है ना। क्या मुझे आपको कभी ये तजस्सुस हुआ कि मेरा अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम है? अल्लाह ताला ने जवाब में उनको क्या कहा कि हाँ मूसा, आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरे आपसे खुश होने की अलामत क्या है, कि जब आपके ऊपर नेक लोग हुक्मरान हो जाएं तो ये आपके ऊपर मेरी रजामंदी और खुशी की अलामत है, और जब आप पर बदतरीन लोग हुक्मरान बन जाएं तो ये मेरे आपसे गज़ब की अलामत है। बात समझ गए ना? तो तजस्सुस इस चीज़ का होना चाहिए कि मैं जन्नत के किस दर्जे पर जाऊँगी, अल्लाह ताला ने मेरा नाम जन्नतुल फिरदौस में रखा कि नहीं रखा, मुझे नबी सल्लम का दीदार होगा कि नहीं होगा। ये तजस्सुस रखिए। अपनी स्किल्स को, अपनी सारी खूबियों को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और यकीन कीजिए, तजस्सुस करके बंदा अपना जीना हराम कर लेता। अपने घर की खबर नहीं होती, दूसरे के घर के मामलात में हलकान। बस आप देखिए, अगर आपको आपके नेबर्स की भी खबर मिल जाए, आपके रिश्तेदारों के घर में क्या हो रहा है उसका भी खबर मिल जाए, और सदर ओबामा ने तो अब अगले सदर क्या कर रहे हैं आपको वो भी पता चलना ज़रूरी है, और मलका विक्टोरिया ने क्या काम इस वक्त अपने ऊपर लिए हैं, और फलां गुलकार और अदाकार जो है उसकी किससे स्कैंडल चल रहा है, कौन किसको तलाक देने वाला है, किससे शादी करने वाला है, आप मुझे बता सकते हैं आपके दिमाग का क्या हाल होगा? मैं तो एक लफ्ज बोल सकती हूँ जो आपको बड़ा बुरा लगेगा, डस्टबिन होगा, ट्रैश कैन होगी। देखिए ना, ट्रैश कैन में भी तो जो आता है डालते ही जाते हैं ना। मैं सोचती हूँ जो लोग बहुत दूसरों के मामलों में कंसर्न्ड होते हैं और हर वक्त ही फिक्र कर रहे होते हैं, कभी वो अपने हालात के बारे में भी तो सोचें। आप देखिए कि अल्लाह के नबी की सिर्फ एक हदीस पे गौर कर लेना तो हमारी जिंदगी से तजस्सुस कम अज कम बेकार किस्म का तो निकल जाएगा। और वो क्या था, आपने फरमाया मिन हुस्नुल इस्लाम अल मरु तर्कहु माला यानी, आदमी के इस्लाम का हुसन इस बात में है कि हर उस चीज को छोड़ दे जिससे उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे आपको पता भी लग जाए कि हमारे फलां रिश्तेदार के घर में ये मामला चल रहा है या ये खराबी हो रही है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, कौन दे रहा है, क्या ले रहा है, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मसलन हम ये देखते हैं कि अमूमन लोग किस चीज का तजस्सुस करते हैं, खासतौर पे हमारे कल्चर में ये चीजें बहुत आम है। मैं एक दो करके जरा तरतीब के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि इस तजस्सुस की आदत ने कितनी बच्चियों का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, कितने बेचारे दुखी लोग जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं वो सिर्फ इसलिए महफिलों से में नहीं आते कि लोग बातें पूछेंगे। यानी मैं आपको पूरे यकीन से दो मिसालें देकर बात पे चलती हूँ। एक मेरी दोस्त थी, तो वो बहुत अच्छी दोस्त थी, अच्छी लड़की थी, यानी नेक भी थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जहाँ शादी हुआ नहीं भी, वो फैसला हो गया, घर बैठ गई, तो वो बाहर जाना छोड़ चुकी, मस्जिदों में जुमे के लिए नहीं जाती थी, कहीं दावत प्रोग्राम दरसों में नहीं आती थी। भाई क्यों, क्या हो गया आपको? कहती नहीं, फिर मुझसे पूछते हैं लोग कब जा रही हैं आप घर, क्या हो रहा है, लोग ये पूछ। ये तजस्सुस बहुत बड़ा तजस्सुस होता है लोगों को कि फलां की बेटी घर में क्यों बैठी हुई है, ये 8 दिन के लिए आई थी, 12 दिन की हो गए, भाई ये 15 दिन से, ये 1 महीने से क्यों आके बैठी है, फलां की बहू इधर क्यों नहीं है, भाई आपको क्या लगे आपकी भला से। अच्छा, दूसरा तजस्सुस एक और हमारी दोस्त है, अल्लाह का हुक्म है, नहीं हुई शादी, हुई है नहीं हुए बच्चे, 10 साल, 12 साल, 5 साल, जितने भी हैं, अब हाल क्या हो गया कि जब आप उन्हें कहें कि आप पाकिस्तान कब जा रही हैं, कहती मैंने नहीं जाना। क्यों? कहती वहां जाऊंगी, जिसको गले मिलना है पहला सवाल कान में उसने कहना है कुछ है, अच्छा नहीं है तो अगला सवाल जो उन्हें इलाज कराया, अच्छा आप कहेंगी कराया बहुत किधर से, फिर तीसरा ये उन्होंने इलाज बताना भी एक जरूरी, और चौथा पांचवा छठा, और फिर आहें भरनी। बड़ी मजे की बात है, शादी के शुरू में तो ये सवाल पूछते हैं कोई खुशखबरी है, तो खुशखबरियां तो रोज ही बड़ी होती हैं, कितनी मुझे आप पूछे, मैं तो आपको 10 खुशखबरियां सुनाऊंगी, उधर सूरत निसा पूरी हो रही है, उस क्लास में सूरत मायदा पूरी हो रही है, उसमें सूरत हुजरात चल रही है, उधर कुरान पूरा हो रहा है। और मेरे साथ खुद भी ये वाकया हुआ था, मेरी शादी हुई थी जब शुरू में बिल्कुल 1 साल ही हुआ होगा, तो हम अमेरिका के एक और स्टेट में हम गए, वहां खैर से हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो किसी ने मुझसे भी वही सवाल किया जो सबसे करते हैं, मैंने वही जवाब दिया जो मैंने अभी दिया, मेरे खानदान में खबर फैल गई, मुबारक हो मुबारक हो। अब उन्होंने मुबारक कौन सी फैलाई थी, मेरे लिए तो वो बड़ी बबरकत साबित हुई कि उनकी दुआएं मुझे लग गई। तो वो जो बात सुना रही हूँ कि बच्चा है कि नहीं है, उसका तजस्सुस क्या होता है, शुरू में तो मुबारक और यानी खुशखबरियां और ये वो, अच्छा बाद में फिर क्या कहती हैं। रिसेंटली जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा अब क्या हाल है, 10 साल शायद शादी को गए, कहती अब वो तो नहीं पूछती कुछ है नहीं, अब गले मिलने के बाद कहती हैं चलो कोई नहीं, अल्लाह सबको तो सब कुछ नहीं देता ना, तो तुम्हें कुछ तो दे देगा। भाई आप क्यों दिल जलाते हैं, आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, क्या ये बातें पूछने की हैं, ये बताने की हैं, और बाज़ तो इतनी पर्सनल बातों का तजस्सुस करते हैं, अल्लाह रहम करे। तो हमारे कल्चर में जो बहुत सारी चीज़ें तजस्सुस की लोगों के दिमागों में होती हैं, एक तो यही है रिश्तों का। चले हम मंगनी से शुरू करते हैं, बच्ची ज़रा सी बड़ी हुई 12, 14, 16 की, किया इसका कहीं? अच्छा हमारे दौर में जब हम जवान थे ना, तो ये सवाल हमारे सामने भी लोग हमारे घरों में पूछते थे एक दूसरे के लिए, जिसकी बेटी 15 के करीब 16 की ना, तो माँ बाप को जब भी उसके आने मिलना, अच्छा इसका रिश्ता किया है? भाई रिश्ता करेंगे तो सबसे पहले लड्डू का डब्बा आपको भेजेंगे, ना भेजा तो आपने हमारी जान नहीं छोड़नी। अच्छा फिर जरा सी बच्ची बड़ी हो जाए 18 से 19 में हो जाए, अच्छा रिश्ते आते हैं? अच्छा देखो कर दें, फिर वक्त होता है रिश्ते आने का। अच्छा 22 साल 24 के ऊपर लड़की आ जाए ना, रिश्ता अभी तक ना हो ना, तो फिर पता क्या कहते हैं, मैंने दिखाया था रिश्ता पसंद नहीं, अब दिन ब दिन कोई अच्छे रिश्ते थोड़ी आने हैं। यानी सबसे पहला तजस्सुस होता है बच्चों की मंगनियों का, रिश्तों का। अच्छा बैठे हैं तो जोड़ रहे हैं रिश्ते, कहीं सोचा हुआ है बेटे का कहाँ करना है, बेटी का कहाँ करना है? सच बताएं लोग ये बातें आपस में करते हैं कि नहीं? ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है 4 घंटे की शादी हॉल में बैठकर, वो क्या होती है, और 4 दिन होती है माशाल्लाह, मेहंदी में भी होती है, फिर निकाब में भी होती है, फिर रुख्सती पे होती है, फिर वलीमे पे, 4 दिन आप एक मुज़ाकरात करने जो जाती हैं शादियों पे, क्या करके आती हैं? کتنوں کے رشتے ناتے جوڑ توڑ کے آتے ہیں. اچھا خیر اللہ اللہ کر کے منگنی ہونے کی بات ہوئی, رشتہ ہوا, پھر پوچھیں گے اپنوں میں ہوا ہے. اچھا ہو گیا, اب ہم مبارک دیتے ہیں, جی مبارک ہو ہماری بیٹی کی منگنی ہو گئی. اب سوال کیا تجسس کا, کہاں ہوئی, یہ تو پہلا سوال ہے. لڑکا کیا کرتا ہے, ساس کتنی, گھر بڑا ہے اور فیملی کتنی بڑی ہے, اکیلا بیٹا تو نہیں ہے, گاڑی ہے اس کے پاس, داڑھی نہیں پوچھتے گاڑی پوچھتے ہیں. ہاں اچھا پھر دین کا کوئی تجسس نہیں پوچھتے کہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں, پانچ وقت نمازی ہے کہ نہیں, کاروبار میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. سوال سارے ہمارے دنیا بڑھانے والے ہوتے ہیں. خیر کرتے کراتے اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے جی شادی کی تیاریاں. اب شادی کی تیاریوں کا تجسس کیا ہے کہ جی یہ شادی کہاں کر رہے ہیں, تیاری کہاں سے کر. سب سے مشکل جو مجھے اپنی کئی دوستوں بہنوں کا ایک غم اس چکر میں نظر آیا ہے, کہتی لوگ کپڑوں کی قیمت بڑی پوچھتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود غلط بتاتے ہیں. میں نے کہا کیوں بہن آپ اتنی کیوں دکھی ہیں, کیا ہوا ہے؟ کہتی پاکستان میں مسئلہ پڑا ہے, کوئی جوڑا پہن, یہ کون سے برانڈ کا ہے, مہر چیک کر رہے ہوتے ہیں, ڈبا کو گفٹ دے وہ بعد میں کھولیں گے, پہلے اس کی سٹیمپ چیک کرے ہوتے ہیں یہ کس کی ہے. تبھی تو پھر ہمارے ملک میں نقلی مہریں بھی بہت ساری ہیں نا, وہ پہلے ہی پوچھتے ہیں اصلی چاہیے کہ ڈپلیکیٹ چاہیے, ریپلیکا چاہیے, فلاں چاہیے. یہ کپڑوں کا تجسس شروع ہو جاتا ہے. اچھا دلہن کا جوڑا کہاں سے آیا, کتنے کا لیا ہے, یہ ساری خبریں مجھے دوسروں نے دی ہیں, واللہ میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. کہنے لگی کہ پوچھو نا شادی میں, اگر مثال ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے یہ جوڑا, تو وہ جو اصلی قیمت ہوتی ہے نا کوئی تین گنا زیادہ جو بارگیننگ سے پہلے کی, وہ بتاتے ہیں. یہ جتنے کا خود لیا وہ نہیں بتایا, اور اچھا اصلی جگہ نہیں بتائیں کہاں سے خریدا ہے, اچھا کس دکان سے ہے. تجسس یعنی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح کہ ہمیں پولیس میں بھرتی ہونا چاہیے تھا, میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا, خوب تفتیش کرتے اور اگلوا لیتے باتیں. اچھا پھر جو بھی کوئی بتا دینا, کہتے ہیں صحیح کوئی نہیں بتایا ہونا, میں بتاتی ہوں یہ اتنے کا نہیں تھا اتنے کا تھا. اچھا جی زیور کتنا بنایا, اچھا دلہن کے ساتھ تجسس لوگوں کے کدھر کا ہے. اچھا مجھے یاد ہے جب میری خالہ کی شادی ہوئی تھی نا, تو دلہن سامنے بیٹھی ہوتی تھی تو بڑیاں پاس کھڑی ہوتی تھی, یہ چوڑیاں میکے کی ہیں, یہ سسرال کی ہیں, اور پھر وہ بڑی عورتیں نا یوں پکڑ پکڑ کے دیکھ, واہ کافی وزنی ہے, اور وہ جو ساس صاحبہ کو کڑے ڈلتے ہیں وہ پہنتی نہیں تھی, وہ ناپ تولتی تھی, کہتی بھاری ہیں وہ, نہیں پھولے ہوئے ہیں, موٹے ہیں, اوپر سے دکھ رہے ہیں. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, یعنی ہماری زندگیاں اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں نا سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. خیر کپڑے زیور سے اوپر اٹھے, اب کیا ہوا جی, شادی ہو کے گھر میں آ گئے. اب لڑکی شادی سے بعد ایک ہفتے بعد واپس آتی ہے, اب کیا تجسس ہے, ساس کیسی ہے, نندے اچھی ہیں, میاں اچھا, پچھ ایک ہفتے میں تو سارے اچھے ہوتے ہیں. مزے کی بات تو یہ کہ شادی کے 15 سال بعد بھی آپ کہیں کہ ان سے تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے, بس سمجھ آئے. پھر لڑکی سے یہ تجسس, اور سب سے برا تجسس لڑکی سے اور لڑکے سے یا شوہر بیوی سے ان کی خفیہ باتیں پوچھنا. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی بات اور بیوی اپنی مرد کی بات جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہ بتائے, یہ بری بات ہے. تو یہ تجسس نہیں ہے بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ معیوب بات ہے. پھر آپ دیکھیے بات شروع ہوتی ہے اس کے بعد, تو پھر جب لڑکی جو ہے وہ ذرا سی ایڈجسٹ ہونے لگتی ہے اس گھر میں, تو گھر والوں کو اس پہ تجسس شروع ہو جاتا ہے, میکے کتنا جاتی ہے, ادھر تحفے تو نہیں زیادہ دیتی, ہمارا بیٹا تو نہیں اب اپنے سسرال کے ساتھ کچھ زیادہ ہی لگ گیا. اور لڑکی والوں کا تجسس ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس کی ساس زیادہ کام تو نہیں کراتی, اس کو دودھ پینے کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ایسے لگتا ہے ہم کسی کو شادی کر کے سسرال میں نہیں بھیجتے, ہم جیل میں بھیج دیتے ہیں اور اس کا حال پوچھتے رہتے ہیں. ایک ساس کی بات مجھے بڑی اچھی یاد آتی ہے کہ شادی ہوئی تو لڑکی کے گھر سے بہت ہی لوگ آتے تھے اس کا ملنے ملانے کے لیے, تو ساس بیچاری تنگ آئی ہوئی تھی چائے پلا کے, تو ایک بار پھر کوئی آ گیا, کدھر آئے ہیں جی, فلاں کا حال پوچھنے آئے. کہنی کیوں, وہ ہسپتال میں بیمار ہے, وہ ہسپتال میں داخل ہے جو اب اس کا بار بار حال پوچھنے آتے ہیں. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی بات ملے تاکہ ہم پکڑے اور اس کو لے جائیں. پھر ایک اور جو تجسس ہمارے کلچر میں بہت عام ہے, اور وہ کیا ہے کہ مردوں کی کمائی, یعنی جاب کدھر کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بینک میں کتنے پیسے ہیں وہ کوئی دوسرا جانے, لیکن خاص طور پہ یہ جو پیسوں کا تجسس ہے, اور یہ تجسس عموماً بیویوں کو بہت ہوتا ہے, کتنے پیسے ہیں بینک میں. اب تو وہ جوائنٹ اکاؤنٹ والا معاملہ آ گیا ہے, اب پڑھے لکھے دور میں تو الحمدللہ پہلے سے وہ کہتے ہیں بیگم دیکھ لو میرے پاس کچھ نہیں, پہلے بہت تھا, جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں سب کچھ چلا گیا, آپ کو لے کے میں نے سب دے دیا, آپ کو میں نے ساری چیزوں کی قیمت بھی قبول کی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے شوہر دفتر میں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور بعض مرد اللہ ان کو ہدایت دے, بیوی پیچھے سے کیا کرتی ہے, کدھر گئی ہے, چپکے چپکے سے جانا, دبے پاؤں کسی کے کمرے میں چلے جانا, کسی کا خط پڑھنا, کسی کا فون سننا, حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو جو کسی کا خط کھولے. कोई अगर तुम्हारे कमरे की झरी में से देख रहा है तो तुम्हें पूरा हक है कि उसकी आंख में पत्थर डालो, और अगर वो नबीना हो गया या मर गया तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं होगा। इतना ज्यादा हमारा दीन सिक्योर है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया कि लोगो आज का दिन, आज की जगह, ये महीना, ये जिस तरह हुरमत वाला है इस तरह तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है। जान लेने को तुम हराम समझते हैं हकीकत में? अल्लाह ना करे हम में से कोई भी किसी की जान लेने का सोचे। माल लेने को बहुत सारे लोग हराम समझते हैं, चोरी नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, लेकिन सच बताइए कितने लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जत को हराम समझते हैं? और बाज़ दफ़ा हम तजस्सुस की वजह से दूसरे की बेइज्जती इस तरह से करने लग जाते हैं कि हम उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेर देते हैं। जान के थोड़ी सी बात करेंगे किसी की ताकि अब आगे से और सुन ले, ये भी एक बहुत बुरा तजस्सुस होता है। थोड़ी बात करनी, आगे से अगला बंदा खुद ही शुरू हो जाएगा। और बातें खूब सुनी, बाद में जाके कहा वो कह के गई हैं, भाई शुरू किसने की थी, मेरे से क्यों नहीं करती वो, मैंने शुरू ही नहीं की, मैंने सुना ही नहीं, मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो तजस्सुस जो है ये ताल्लुकात को बहुत बिगाड़ देता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि क्या पकाया है। अब तो पता नहीं व्हाट्सएप वाइबर वाले भी सुनते होंगे कि हमने क्या पकाया है। एक वक्त था जब टेलीफोन पर ही सिर्फ बातें होती थी ना, क्या पकाया है। मैं यहाँ आपको एक बड़ा दिलसोज वाक्य सुनाती हूँ। बहुत मेरी करीबी हैं जिनसे मैंने खुद सुना और उनका अपना बात थी। सास थी, बहू साहिबा जो है वो अपने हिसाब से चलने वाली थी, सारी बहू ऐसे ही होती हैं, कोई हर्ज नहीं है, उनको हक है। तो अब वो बुजुर्ग थी ना, तो उस दौर के बुजुर्गों को जरा सी ख्वाहिश होती है कि हमसे पूछ के पकाया जाए, क्या पकाया, क्या खाया। तो उनको ये गिला था अपने घर वालों से, अपनी बहू से, कि मुझे पता ही नहीं होता घर में क्या पका है, मेरे आगे जो ट्रे में आता है वो होता है, मैं खा लेती, मुझे पहले नहीं पता होता। खैर उठी, एक घर में चली गई, कभी बड़े लोग हैं उठे, इधर चले गए उधर चले गए। तो वो इस चीज़ पे बहुत दुख महसूस करती थी जब वो किसी के घर जाना साथ वाले के, तो सुनाओ बहन क्या पका है, तो कहती थी मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता क्या पका है, मैं कैसे बताऊं पका होता। तो वो इतना माइंड करती थी इस बात को कि मुझसे कोई ये ना पूछे क्या पका है, मैं ये कहूं क्या मेरी बहू ने मुझे नहीं बताया क्या पका है, जब सामने आएगा तो मैं देख लूंगी। अब कहने को ये बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इसके इफेक्ट्स और इसके जो असरात हैं ना, वो बहुत दूर तक जाते हैं। किसी मुआशरे में जब आप और मैं किसी दूसरे के लिए, याद रखें एक घर है ना, एक इदारा है, एक स्कूल है, एक मुल्क है, आप एक बात पे याद रखिए कि मैंने अपने साथ रहने वालों को परेशान नहीं करना। अल मुस्लिमो मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानी ही व यदीही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान जो हैं वो महफूज हों, उनको खतरा ना हो कि अभी इन्होंने सुनाना है। आप देखें ना, आप शादी पे गए, मैंने कई लोगों को देखा है बड़े प्यार से तमाम से बैठ के शादी में गए, और थोड़ी देर में देखा तो वहां बैठे आंसू बहा रही हैं, क्या हुआ, किसी की कोई बात चुप गई, कोई यही कह देगा क्या जरूरत इतना महंगा जोड़ा बनाने की, आप रोने लग जाएंगे। क्या आप और मैं दूसरों की बातों को अपने जहनों में रखें तो क्या इस तरह से हमें जहन में आता है कि ये चीज़ दूसरे को कितना बुरा लगती होगी? मोमिन ऐसा कभी नहीं करता। खोज कुरेद करना, इस तरह की बातें करना, हमसायों के घर में झांकना, दो लोग बातें कर रहे हैं जाके कान लगा के सुनना और इस तरह की बातें, ये बहुत ही बड़ी बदअखलाकी है, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे तजस्सुस के बारे में फरमाया कि वो लोगों जो जुबान से ईमान ला चुके हो मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा, मुसलमानों के पोशीदा हालात की खोज ना लगाया करो। इतनी बात के बाद जो बात है ना, ये आप सबके गौर से सुनने की है क्योंकि ये हमारे रोंगटे खड़े कर देगी। क्यों ना दूसरों की खोज लगाओ, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐबों की खोज लगाता है अल्लाह उसके ऐबों के दर पे हो जाएगा। अब बताइए किसकी रिसर्च ज्यादा है, हम दूसरों के ऐप ज्यादा खोल के सामने ला सकते हैं या अल्लाह ताला? और फिर इससे भी बढ़ के खतरनाक बात इससे आ गया है, फरमाया उसके ऐबों के दर पे अल्लाह हो जाएगा, और जिसके दर पे अल्लाह हो जाए उसको उसके घर में जलील कर देगा, घर में उस शख्स की बेइज्जती हो जाती है। बहुत जरूरत है इस बात की, ना करो। और एक और नुकसान भी होता है, ये भी जरा सा थोड़ा सा जज्बात के साथ सुनिएगा। हर बंदे में कमी होती है, ये नहीं हो सकता कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे अंदर भी कोई तो खूबी होगी ना। और इसी तरह दूसरा बंदा जिसको बहुत ही बुरा कह रहे हैं, कोई एक खूबी तो उसमें भी तो होगी ना। जब इंसानों के अंदर कुछ ना कुछ है तो मेरा आपका क्या काम है उसको डंप कर दो, छुपा दो। कभी आप देखें ना, ऊपर से चीज़ चमकती है लेकिन तह के अंदर कालक होगा। पकोड़े बना लें, आपको ऊपर से तेल बहुत सही लग रहा होता है लेकिन जब आप नीचे से देखते हैं तो तेल के अंदर राख होती है। तह में हमेशा गंद होता है, चीज़ें नीचे से ख़राब होती हैं। हज़रत माविया फरमाते हैं अबू दाऊद में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अगर लोगों के छुपे हुए हालात को मालूम करने की कोशिश करोगे तो तुम इनको बिगाड़ दोगे या कम से कम बिगाड़ के करीब पहुंचा दोगे। फिर इसी तरह अहकामुल कुरान में कॉल आता है, इब्न अल इब्ने अब्बास का फरमाया कि जब तुम्हें किसी शख्स के बारे में बदगुमानी हो जाए, बुरा गुमान हो जाए, तो इसकी तहकीक ना करो। हम तो शुरू हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं उस चीज़ के। फिर इसी तरह आपने फरमाया कि जिसने किसी का कोई छुपा हुआ ऐब जान लिया और उस पर पर्दा डाल दिया तो वो ऐसे है जैसे उसने जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। हमेशा दूसरों के लिए दिल बड़ा रखें। आपका दिल वो महफूज बर्तन होना चाहिए जिसमें लोगों की बुराइयां हों, जुबान पे ना आए। आप दूसरों की बातों को जुबान पे लेके आएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, इसको CID कहते हैं। अगर आप देखें मुल्की सतह पे देखें तो ये पूरा काम है, दुश्मनों के राज मालूम करना, खुफिया खबरें लाना, इन चीज़ों को करना, ये एक पूरा सिस्टम है। लेकिन निजी ज़िंदगी में अखलाकी तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और इसके लिए याद रखिए कि सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तज़किया। आप कहते हैं अच्छा ये आदत कैसे जाए? मैं लोगों से कह दूं आज से तजस्सुस करना छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए तज़किया और तरबिया चाहिए होगा। इस पर एक वाक्या बड़ा खूबसूरत है, आपको सुनाती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का है, रात के वक्त गश्त करते थे। आपने बहुत दफ़ा सुना है हज़रत उमर ऐसे हुक्मरान थे जिनकी रातें एक तो अल्लाह के आगे रोते हुए गुजरती थी, दूसरी अवाम का हाल मालूम करने के लिए जानते थे। तो एक दफ़ा एक जगह से गुजरे तो इनको शक पड़ा कि एक शख्स गाना गा रहा है। थोड़ा सा तजस्सुस आगे बढ़ा, करीब हुए तो देखा तो वहाँ शराब भी थी और एक औरत भी थी। उसकी दीवार फलांगी और जाके कहा कि अल्लाह के दुश्मन तू क्या कर रहा है? तू ये सोचता था कि तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह ताला तेरा पर्दा भी नहीं फाश करेगा, समझिएगा। यानी शराब भी है, गाना भी है। तो हज़रत उमर उसके घर पहुँच गए। अब उसका जवाब सुनिए। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन जल्दी ना कीजिए, अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं। अल्लाह ने तजस्सुस से मना किया था, आपने तजस्सुस किया। अल्लाह ने हुक्म दिया था घर में उसके दरवाजों से आओ, आप पीछे से दीवार चढ़कर आ गए। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि किसी के घर में भी आने से पहले इजाज़त तलब करो, और आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में आ गए हैं। हज़रत उमर ने जब उनका ये जवाब सुना, अपनी गलती मानी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, अलबत्ता उससे वादा लिया कि आज के बाद वो भलाई की राह इख्तियार करेगा। कोई घर बैठे कुछ भी करे, आपको मुझे उससे कोई बात नहीं है। लोगों के गुनाहों को मत टटोलिए, ये भी एक बहुत बड़ा तजस्सुस होता है। पिछली ज़िंदगी में कौन क्या करता था, पिछली ज़िंदगियों के स्कैंडल खोल दें। आप देखिए, अल्लाह का एक बंदा है वो तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको अपने रास्ते में लगा लेता है। अब आपको मुझे क्या लगे कि उसकी पिछली ज़िंदगी क्या थी? फिर उसके वाक़यात और बातें खोलना। और आज के दौर में तो अल्लाह रहम करे, इसका सबसे बुरा जरिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो यूट्यूब है। आप एक लफ्ज़ लिख के देखें कभी, आपको लोगों के वो ऐब और राज और वो स्कैंडल और उनकी गंदगियाँ दिखेंगी कि हो सकता है कि उनको खुद भी ना पता होती हों कि ये सब कुछ है। ये नहीं करने की ज़रूरत। आपकी ज़िंदगी मुतमईन होगी। आज भी मेरे जहन में कुछ ऐसे किरदार है हमारे अपने ख़ानदान के कि जो अपने हाल में मगन है, उनको परवाह ही नहीं है किसी की। आंधी आए, तूफान आए, बिजली गिरे, वो कहते हैं मैं अपने हाल में खुश हूँ, और वही बंदा खुश है।